نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج جمعة المبارك، मुबारक दिन भी है और मुबारक महीना भी है, तो दो मुबारक चीज़ें साथ मिल गई। जुमे के दिन की बहुत फजीलत है। हमारे रमज़ान के अलावा जो भी जुमे आते हैं उनकी अलग से सुन्नतें हैं। कुछ सुन्नतें इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको बताऊंगी। ये वो दिन है कि जिसके नाम पर एक सूरत भी नाजिल हुई, यानी किसी और दिन के नाम से कोई सूरत नहीं है, लेकिन इस दिन के नाम से सूरत भी मौजूद है कुरान में। ये वो दिन है कि जिस दिन क़यामत भी आएगी। इसी वजह से एक हदीस से हमें पता चलता है कि जब ये दिन शुरू होता है तो ये तमाम चरिंद परिंद वगैरह ये बड़े खौफज़दा हो जाते हैं कि कहीं आज ही तो क़यामत नहीं है। जिन पे आनी है उनको तो शायद होश भी ना हो या फजर पे उठने की तौफीक भी ना हो, लेकिन वो जो बेज़ुबान है वो इतने डरते हैं। वाकई वो दिन है भी डरने का जिस दिन सबसे सवाल किया जाएगा, और हिसाब किताब चीज़ ही ऐसी है कि इंसान को वैसे ही कह दिया जाए ना कि आपका मैं अभी आके आपसे हिसाब लेती हूँ, पैसों का हो, किसी कमोडिटी का हो, प्रोडक्ट का हो, कोई भी चीज़ का, तो इंसान एकदम कुछ परेशानी सी होने लगती है कि हिसाब देना इंसान को बहुत मुश्किल लगता है। और कहाँ ये कि सारी ज़िंदगी की आमाल का, ना सिर्फ आमाल का, उसके माल का, उसकी आमाल में सिर्फ यानी हम सोचते हैं एक्शंस हैं, लेकिन आमाल वो भी है जो मुंह से कही हुई बातें हैं, आमाल वो भी हैं जो आपके एक्शंस हैं, और आमाल वो भी हैं जो दिलों में आई हुई बात थी। फिर आपका माल, उसके एक एक डॉलर का हिसाब, तो कहाँ जाके बात बनती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे असलाफ जो थे वो बड़े खौफज़दा रहा करते थे कि उस दिन कैसे हिसाब देंगे। और वाकई आप देखें उनकी जो ज़िंदगी हैं वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि हमेशा वो गोया हिसाब किताब के लिए तैयार हैं। उनको इतना यकीन था कि हमसे जवाबदेही मांगी जाएगी, हमें जवाब देना होगा, हमसे पूछा जाएगा। यानी और लोगों को तो छोड़ें, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो थे कितनी बात के शख्सियत हैं, इन्होंने तो कोई सहाबा का था भी इनका कोई ज़माना नहीं देखा, लेकिन इतना उनमें भी खौफ खुदा था। एक दफ़ा अपने लश्कर में जा रहे थे तो किसी जगह पड़ाव किया तो फौजियों ने इनके वहाँ पे एक गाय पकड़ के ज़िबा कर ली उस बस्ती से। वो गाय एक बूढ़ी औरत की थी। औरत अगले दिन सुल्तान के पास आई और उनके वो लोग जब कहीं से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक पुल था, उस पे आके खड़ी हो गई। जब सुल्तान का काफ़िला वहाँ से गुज़रने लगा, लश्कर गुज़रने लगा, तो औरत ने रुकने का इशारा किया। जैसे ही सुल्तान की सवारी रुकी, वो बूढ़ी औरत ने आगे बढ़ के इनके घोड़े की लगाम थाम ली और इन्होंने पूछा, ए नेक खातून, क्या बात है? औरत ने कहा, मेरे मुकदमे का फैसला इस पुल पे करना है कि आखरत के पुल पे? सलाहुद्दीन ये सुनते ही घोड़े से नीचे उतर आए, पूछा, आखरत के पुल पे फैसला करने की हिम्मत किस में है? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या ज्यादती हुई है? मैं तुम्हारे मुकदमे का फैसला अभी करूंगा। औरत ने कहा, बादशाह, मैं गरीब औरत हूँ। मेरी एक गाय थी जो मेरी जिंदगी की गुजर बसर थी। तुम्हारे फौजियों ने पकड़ के उसको ज़िबा कर दिया। मुझे मेरी गाय चाहिए। अब इन्होंने सोचे, अपने फौजियों को कहा कि इस पे इनसे माफ़ी मांगे, और बहुत सारे दिरहम दिनार दे के उस औरत को राज़ी किया। बड़ी इज्जत एहतराम से रुख्सत किया। तो पता चलता है कि जिन लोगों में हिसाब का, जवाबदेही का खौफ होता है, वो छोटी छोटी बातों में भी देखते हैं कि कहीं हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारी वहां पे पकड़ हो। यहां पे हमें किसी का हिसाब चुकाना पड़े भी तो कोई हर्ज नहीं, वहां पे जाके नहीं हम हिसाब दे सकते। और अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह हिज्र में, फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून, तेरे रब की कसम, हम लोगों से ज़रूर सवाल करेंगे उस चीज़ के बारे में वो जो दुनिया में किया करते थे। तो एक एक चीज़ का जहाँ पे हिसाब होना है, वहाँ पे इंसान को कितना केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कितना फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, मुझसे कोई ऐसी हक तलफी ना हो जाए किसी की कि जिसका मुझे कल भुगतना पड़े नतीजा। तो चूंकि ये महीना बख्शिश का महीना है, तो हमने इस महीने में, अब जबकि आपने पहला फेज कर लिया ना मुकम्मल, अपनी गलतियों को चेक किया है, अपनी जितना कुछ भी आपको याद आ सकता था उसको जहन में ला के, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का। ये स्टेप बाद में आता है, ये पहला स्टेप नहीं होता। पहला स्टेप है रियलाइजेशन, पहला स्टेप है ये जानना और मानना कि मेरी गलती है और कहाँ कहाँ है। अच्छा, अगर सिर्फ कह दिया जाए मेरी गलती है, क्या गलती है, कुछ पता ही नहीं है, तो तब भी मलामत नहीं होगी, कोई पशेमानी नहीं होगी, रिग्रेट नहीं होगा। ज़रूरी है कि पता हो गलती क्या क्या है, तब रिग्रेट होगा। हाँ, फलां वक्त में मैंने ये किया था, फलां के साथ ये मैंने ज्यादती कर दी, फलां को मैंने इस तरह सता दिया था, फलां की चीज़ मैंने इस तरह से ज्यादती से हथिया ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको अपनी गलतियां नज़र आई हैं तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और अब करने का काम ये है कि अपनी आजजी, अपनी मिस्कीनी अल्लाह ताला को दिखानी है। देखें, जितने मर्जी गुनाह हैं मगर बस अकड़ना नहीं है। खुद सोचें, आपने किसी कोई बड़ा आदमी हो, कोई बड़ी हैसियत वाला, कोई बड़ी पोजीशन पे हो, उससे कोई काम करवाना हो, या अगर वो नाराज़ हो गया तो उसको मनाना हो, कैसे मनाएंगे जबकि गलती भी आपकी ही हो? क्या बस यही कहेंगे, आई एम सॉरी, बस अच्छा छोड़ दें आप? नहीं, बिच बिच जाएंगे ना, फरियादें करेंगे, खुद को नीचा करेंगे, और दो चार आंसू भी बहाने पड़े तो बहाएंगे, चाहे नकली क्यों ना बहाएं। तो इसी तरह जब हम उस रब्बे कायनात से मगफरत मांगे ना, तो खुद को नीचा करें, खुद को जलील करें, खुद को झुका दें कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं है। रोना भी पड़े तो रो के रब को मनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये बताया भी है कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो ना, तो रो रो के दुआ करनी चाहिए। अगर अगर नहीं रोना आता तो रोनी सूरत ही बना लो। खैर, हमारा तो हाल ही इतना बुरा है कि रोना आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब अभी हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, अभी हमने सही तरह अपना हिसाब नहीं लिया। तो रो रो के भी मनाना पड़े, मनाना है। देखिए, बच्चा कुछ मांग रहा हो ना और हमने ना देना हो, तो उसके हज़ार दफ़ा मांगने पे भी हम कहते हैं नहीं, बस मैंने नहीं लेके देनी ये चीज़। लेकिन अगर वो मांगते हुए रोने लग जाए तो हमारा दिल कैसे मोम हो जाता है? और अगर कहीं रोते रोते उसकी हिचकी बन जाए, सिसकियां लेने लगे, फिर तो दिल बिल्कुल ही पसीज जाता है। फिर हम कहते हैं अच्छा चलो ये ले लो जो तुम मांग रहे थे वो ले लो, और चलो ये मेरी तरफ से ले लो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं ना। तो हम तो इतने गुनाहगार हो गए हैं। अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ है, अल्लाह ने नहीं भी बख्शना तो रो रो के हमने अपनी बख्शिश करवानी है उसके कदमों में पड़ के, फरियादें करके, रो के, रो रो के दिखाना है कि अल्लाह ताला हम पे रहम खा ले। लेकिन याद रखें, बख्शिश लिए बगैर टलना नहीं है कि अल्लाह मैं तेरे दर पे पड़ी हूँ, जब तक तू माफ़ ना कर देगा मैं नहीं उठूँगी, मैं नहीं टलूँगी। इसके लिए आपको तन्हाई चाहिए, जब कोई भी नहीं हो। अब आप इसमें देख लें, अगर रात का वक्त है तो बहुत अच्छा है। दिन में अगर आप समझती हैं रात को आपको बहुत नींद आती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, दिन में जब कोई भी घर पे ना हो उस वक़्त मांग सकते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह ताला के सामने रो लेंगे ना और बख्शिश मांगेंगे, खूब मांगेंगे अपने गुनाहों को याद कर करके और उसकी रहमत की तरफ देखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला जब आप मुसल्ले से उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका खुद दिल बहुत हल्का हो चुका होगा। तो इसके बगैर लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बख्शिश के बगैर नहीं उठना। हमारी सबसे बड़ी अव्वलीन दुआ ही ये होनी चाहिए कि अल्लाह माफ़ कर दे। मैंने आपको बताया था ना वो हदीस कि जिसको इस महीने में माफ़ी ना मिली वो तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया वो। अगर हमें कोई कह दे कि अगर इतने दिन रह गए हैं, अगर आपने ये चीज़ ना खरीदी तो सारा कारोबार और सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा आपका, क्या करेंगे? भागेंगे लेने के लिए ना, वो तो माल है सिर्फ, और ये तो ज़िंदगी की तबाही है, आखरत की तबाही है। कि जिसके ऊपर रब को इस महीने में भी ना रहम आए, सोचें कितना बदबख्त है वो, फिर उसके लिए तो रोने का ही मकाम है। तो अल्लाह की रहमत इस वक्त इतने उरूज पे है, 11 महीनों में उतनी नहीं जितनी इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत है। तो ये महीना ऐसे ही है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई, उन सारे भाइयों की बख्शिश यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से हो गई ना, इसी तरह इस रमज़ान की वजह से बाकी 11 महीनों के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। तो बख्शवा लो अपने आप को, बड़ा अच्छा चांस है, बड़ा अच्छा मौका है। इस वक्त रब देने को तैयार है, माफ़ करने को तैयार है, तो इस चांस को जाने नहीं देना, माफ़ी करा के रहना है। चाहे हमें कितने आंसू बहाने पड़े, चाहे नकली आंसू आपको लाने पड़े, मगर जब आप रियलाइज़ कर लेंगे ना कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मेरा रब मान जाए, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी माफ़ी जो होगी ना, मांगने का तरीका और जो आपका आपकी दुआ होगी उसमें बहुत खलूस आ जाएगा। वरना याद रखें एक बात जहन में रखिएगा, अगर मौत आ गई ना तो मौत जो है वो दो चीज़ों का दरवाज़ा बंद कर देती है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर सकते मौत आ गई तो, एक अमल और एक तौबा। ये दो चीज़ें इंसान कितना भी जतन करे इन दो चीज़ों को नहीं पा सकता। इसी वजह से फिर सहाबा कराम इतना डरा करते थे, अबू हुरैरा इसीलिए अपने मर्जुल मौत में रोने लगे। लोगों ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, इस दिन दुनिया के लिए नहीं रोता, इसके लिए नहीं रो रहा, इसके लिए रोता हूँ कि मेरा सफ़र बहुत लंबा है और मेरे पास सफ़र का सामान बहुत कम है। मैंने उस टीले पे सुबह की है। जो जन्नत और जहन्नुम की तरफ जा रहा है, कि तरफ आ दरमियान में है उसके, उस टीले पे मैंने सुबह की है। मुझे नहीं पता कि मेरी मंजिल कौन सी है, इधर भी हो सकता हूँ, उधर भी हो सकता हूँ। जब इतनी अनसर्टेनिटी हो, ये सहाबी रसूल हैं, वो ये फरमा रहे हैं, हमारे लिए क्या कोई यकीनी बात है जिसको मालूम ही नहीं है कि उसका ठिकाना क्या है, फिर वो गाफिल कैसे हो सकता है? जिसको मालूम ही नहीं हो कि उसकी मंजिल कौन सी है, फिर वो अमल करना छोड़ कैसे सकता है? तो वो तो फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसी जगह पे सुबह की है कि मुझे अपनी मंजिल का नहीं इल्म। मैं सोचती हूँ हमें कहाँ इल्म है, हम कहाँ जानते हैं। इसीलिए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे, जब सुबह सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार ना करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना करो। तो ये ना वेट करते रहो कि अच्छा अब करूँगी, अब करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, तरसों करूँगी, नहीं आज करूँ। अपनी मौत की तैयारी आज कर लो, क्योंकि चले जाना है। तो ये तो चीज़ हर एक को पेश आनी है, और मट्टी में जाके फिर मिल जाना है, कब्र के कीड़ों का साथी बनना है, मुनकर नकीर से हमारा सामना होना है, ज़मीन के नीचे पता नहीं कितना अरसा मुद्दतों रहना पड़ना है, कितना ज़माना वहाँ पे गुजारना पड़ेगा, और उसके बाद कयामत का सख्त मंज़र देखना है। उसके बाद पता नहीं है कि मंजिल क्या है, जन्नत है या जहन्नम। तो फिर कौन बेफिक्र होके बैठ सकता है, फिर कैसे हम आज आराम कर लें? अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारी आंखें खुलती नहीं है, ये मौत के बाद तो खुलेंगी, आज खुल नहीं रही। तो इंशाअल्लाह ताला जो पिछली ज़िंदगी है इस पे तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला को मनाना है, अपनी ये छोटी छोटी हकीर सी नेकियां कर कर के रब को दिखानी है कि वो हमसे राज़ी हो जाए। आपने छोटे बच्चे जिनके घरों में, या आपके भांजे भांजियाँ या कोई किसी के पोते नवासे आप देखेंगे, छोटे बच्चे इतने सियाने होते हैं, अगर उनको पता चल जाता है ना आप नाराज़ हैं, तो देखा है किस तरह से मनाते हैं, कभी इधर कलाबाजियाँ खाते हैं, कभी उधर उछल उछल के दिखाते हैं, कभी अपने खिलौने ला ला के आपको दिखाते हैं। हालांकि आपको ना उनके खिलौने चाहिए ना उनके उछलने कूदने से आपको कोई मज़ा आ रहा है, मगर वो अपनी ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आपका दिल मोहम हो जाए, आप उनसे खुश हो जाए ना। तो देखो उनको भी इतना पता है कि खुश करने के लिए मैं ये हरकतें करूँगी तो मेरी माँ मेरे से खुश हो जाएगी। तो यही हाल हमारा है, हमारी इन नमाज़ों का, इन उठकों बैठकों का, इस भूखे रहने का, इन तस्बीहात का, ये इसी तरह है जैसे वो बच्चा कलाबाजियाँ खा रहा, जैसे वो बच्चा अपने टॉयज़ ला ला के दिखा रहा है ना, इस तरह से ही हमारी ना हमारे रात के जागने की अल्लाह को ज़रूरत है, ना हमारे भूखे प्यासे रहने की उसको ज़रूरत है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोशिशें हैं छोटी छोटी, जिनसे हम अपने रब्बे करीम को मनाना चाहते हैं। तो इस स्पिरिट के साथ इन इबादात को अदा करें कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, वो बस मान जाए, मान क्या बख्शिश हो गई। वो मुझे जाने दे, वो मुझे पकड़ ना करे, वो मेरा हिसाब ना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। तो आयशा ने जब आसान हिसाब का पूछा कि अल्लाह ताला तो खुद फरमाते वसौफ़ युहासबु हिसाब यसीरा, तो आसान हिसाब क्या चीज़ है? ये आसान हिसाब नहीं है कि अल्लाह ताला बस छोड़ दे ना, पकड़ ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशी तो सबकी होनी है, अल्लाह ताला के सामने पेश तो सबको होना है, मगर आसान हिसाब ये है कि अल्लाह ताला आमालनामा देखे और जाने दे। ये नहीं कि पेशी ही नहीं होगी और ऐसे ही जाने दिया जाएगा, चलो चलो कोई भेड़ चाल है कि चलो नहीं, किसी का आमालनामा देख के अल्लाह ताला कह देंगे चलो मैंने इससे कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं। कुछ सवाल ही ना करे अल्लाह ताला, वो है आसान हिसाब। लेकिन जो पेश होना है, सोचे अदालत में पेश होना ही कितनी मुश्किल चीज़ है, बाद में आपको बरी कर दिया जाए, वो कर दे, वो तो बाद की बात है। इतना से टिकट मिल जाता है ना, ट्रैफिक का टिकट मिल जाता है, अदालत में जाना पड़े तो कितना इंसान खौफजदा होता है। वो क्या है, सारे इंसान ही तो हैं, और अल्लाह ताला की अदालत, उसका तो हम यानी तसव्वुर भी करना चाहें तो नहीं कर सकते आज कि वो कैसी जगह होगी, कैसे अल्लाह ताला का तख्त लगा होगा और कैसे फरिश्तों ने घेरा होगा, कैसे जहन्नुम लाई जाएगी और आमाल की तराजू रख दी जाएगी और नाम लेके पुकारा जाएगा पूरी मखलूक में से, फलां बिनते फलां आ जाओ हाजिर हो जाओ, तुम्हारी बारी आ गई है, और मैं और आप अपनी अपनी किताब। जिसमें एक एक हमारी बात छोटी या बड़ी, एवरीथिंग हर चीज लिखी होगी, उसको लेके हाजिर होना होगा। तो हिसाब आसान नहीं है, हिसाब बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल चीज है। जन्नत या आगे उसकी मंजिलें तो बाद की बात है, पहले तो ये दुआ करें कि इस जगह से खलासी हो जाए, इस जगह पे पूछ पड़ताल ना हो, लंबा टाइम ना लगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ, उनकी बात आपको उस दिन बताई थी ना, अशरा मुबशरा में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए अब्दुर्रहमान तुम मेरे सहाबा में सबसे आखिर में मुझसे जन्नत में मिलते हो। बड़े घबरा गए, फरमाने लगा क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया तेरे माल की कसरत ने तुझे रोके रखा माल का हिसाब किताब देने में। हालांकि मैंने आपको बताया था उन लोगों का तो माल भी हलाल और खर्च भी कैसा, फिर भी फरमाया तेरे हिसाब किताब ने, क्योंकि इतनी जितना ही ज़्यादा नेमती है तो पूछ पड़ताल तो होनी है ना, कितना हलाल है कितना हराम है, किधर किधर स्पेंड किया। वो 500 वाला तो आपको याद है ना, जिनके बगैर, उनका जवाब दिए बगैर किसी के कदम हशर के मैदान से हिल नहीं सकते, हिल नहीं सकते किसी के कदम। जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी का क्या किया था, क्या करती रही जवानी में, माल किधर से कमाया, हलाल था कि हराम, कितने पैसे हलाल के थे कितने हराम के, खर्च कहाँ पे किए थे, उड़ाए थे या अल्लाह के राह में भी दिए थे, अपनी ज़रूरियात पूरी की थी या तायुशात में लगा रही थी। जो इल्म लिया था उस पे अमल कितना किया, इसने इन सवालों के जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते, ये तो जरूरी दिखाने होंगे। जैसे आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कोई और सवाल करे ना करे, पासपोर्ट तो देखेगा, ये तो चेक करेगा कि वीजा लगा है कि नहीं, इतने तो क्वेश्चन होगा ही ना। तो अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। ये जुमा है ना, इतना प्यारा दिन है, इस दिन में एक घड़ी है ऐसी जिसमें दुआ कबूल होती है, उस घड़ी को तलाश कर लें ताकि इंशाल्लाह हम उसमें अपनी बख्शिश मांग सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जिस मुसलमान बंदे को वो मुयस्सर आ जाए, यानी वो मिल जाए वो घड़ी, और वो खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा हो, तो अल्लाह से जिस चीज़ का भी सवाल करता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमा देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस घड़ी के बहुत शॉर्ट होने का, बहुत मुख्तसर होने का इरशाद फरमाया, बहुत थोड़ी सी देर के लिए होती है वो, कोई घंटों घंटों की नहीं होती। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लेकिन आज के दिन में है वो घड़ी। इस घड़ी को तलाश करें, कुछ जगह पे आता है कि वो घड़ी इमाम के मिंबर पे बैठने से लेके नमाज जुमा के ख़त्म होने तक है, और एक और जगह पे आता है कि असर से लेके मगरिब तक के दरमियान है, जब हम अफ्तारियाँ तैयार कर रहे होते ना उस वक़्त। तो ये दो रिवायात हमें मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि जब जुमे का वक्त शुरू हो जाए उस वक्त से लेके मगरिब के वक्त तक हम खूब इस्तग़फ़ार करें, खूब इस्तग़फ़ार करें। क्या इससे ज़्यादा कोई और चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है? क्या है कोई और चीज़? नहीं, तबाही से बचना है ना। इन्हें मैं कहूँगी कि अगर लग्जरीज मिलेंगी आपको या कुछ है, मैं तो ये कहूँगी कि ये लग्जरी नहीं, ज़रूरत है, इसलिए कि जिसको तबाही से बचना है उसको अपने लिए बख्शिश मांगनी है। तो आज की हमारी दुआ है, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई इला सिवाय उसके, अल हय अल क़य्यूम, जो हमेशा ज़िंदा है और हमेशा कायम है, वह अतूबु इलैह, मैं उसके हुजूर तौबा करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमात पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो मैदाने जंग से भागा हुआ हो। आपको पता है ना, मैदाने जंग से भागना कबीरा गुनाह है, तो कबीरा गुनाह भी इसने किया हो ना, तो उसकी भी बख्शिश हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको ये दुआ मांगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसके बारे में ख़ास तौर पे ये हदीस आती है अबू दाऊद की, वरना आप अस्तग़फिरुल्लाह तो कर ही सकते हैं। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने का दिन है, तो आज का हमारा जिक्र दरूद का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जुमे का दिन है, बस तुम इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पे पेश किया जाता है। तो इसलिए दरूद भेजिए, और आज के दिन के जो सुन्नत से साबित काम है, गुसल कीजिए, मिसवाक करें, और मर्द लोग खुशबू लगाएं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुसल करे और जिस कदर इम्कान हो तहारत करे, फिर तेल लगाए या अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करे, इसके बाद जुमा की नमाज़ के लिए निकले और दो आदमियों के दरमियान में जो मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं तफरीक ना करें, यानी दो लोगों के दरमियान घुस के ना बैठे, फिर जिस कदर उसकी किस्मत में हो नमाज पढ़े, फिर जिस वक्त इमाम खुतबा पढ़ने लगे तो चुप रहे, तो इसके वो गुनाह जो इस जुमे और दूसरे यानी पिछले जुमे के दरमियान हो गए हैं वो बख्श दिए जाएंगे। ये बुखारी की रिवायत है। तो क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? गुसल करें, तहारत करें, अपनी सफाई सुथराई करें अच्छी तरह अपने गुसल में। फिर आपको तो खुशबू नहीं लगाने की ज़रूरत, मगर अगर आप जुमे के लिए जाती हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर, लेकिन मर्द जाएं, अगर आप चली भी जाती हैं तो वहाँ पे दो लोगों के दरमियान ना घुस के बैठे, जिधर आपको जगह मिले उधर बैठ जाएं। और जब इमाम साहब खुतबा देने लगे तो आप बिल्कुल खामोश रहें, कोई बोल रहा हो तो उसको भी ना चुप कराएं कि चुप कर जाओ। तो तब उसके लिए ये खुशखबरी है कि उसके गुनाह पिछले से इस जुमे तक के इंशाल्लाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सूरह कहफ ये आज तिलावत करें, जो सूरह कहफ की तिलावत जुमे के दिन करेगा तो आइंदा जुमे तक, जो नेक्स्ट फ्राइडे तक, उसके लिए नूर होगा और क़यामत के दिन भी ये नूर बनेगी ये सूरत। तो औरतों पे जुमे का पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, ना मरीज़ के ऊपर फ़र्ज़ है, ना मुसाफिर पे, ना औरत पे, बच्चे पे भी नहीं है। इस तरह से पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। आप घर में भी जुहर पढ़ सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज अपने जुमे के दिन से और जुमे की घड़ियों से फ़ायदा उठाइए। रात को जब भी आपकी आंख खुले तो पूरी रात में देखें, सारा वक़्त तो हम उठ के नफल नहीं पढ़ सकते, तो अक्सर होता है रमज़ान में ऐसे कि बार बार फ़िक्र में आंख खुलती है कि सहरी का तो नहीं टाइम हो गया। तो जब भी आपकी रात की किसी घड़ी में भी आपकी आंख खुले तो दुआएं ज़रूर करिएगा, दुआ करना नहीं भूलिएगा, इसलिए क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन सा वक़्त हो कबूलियत का। आप उस वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर ये पढ़ें, और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर और ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ के आप जो दुआ इंशाल्लाह मांगेंगे वो कबूल होती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। इसी में थोड़े से इजाफे के साथ आप बाज़ार में जब दाखिल होने लगें, मसलन आप वीकेंड आ रहा है, आप ग्रोसरी के लिए जाएंगे या आपकी कोई और ज़रूरियात के लिए आप निकलेंगे, तो ये दुआ ऐसी है कि जो ये दुआ पढ़ेगा बाज़ार में जाते हुए, और मैंने इसको आज़मा के देखा, सुभान अल्लाह, जब मैंने इस दुआ को पढ़ा तो मेरे साथ वाले जो भी लोग होते थे वो कहते हैं, आपको ये चीज़ कहाँ से मिल गई, हमें तो नहीं मिली, हमें तो पता ही नहीं चला, आपको कहाँ से मिल गई। तो सुभान अल्लाह, इतनी बरकत है इस दुआ की। मगर जो हदीस में है, ये तो मैंने अपने पर्सनल बात बताई, जो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने वाले के नामा आमाल में 10 लाख नेकियां लिख देते हैं और उसके 10 लाख गुना माफ़ करते हैं और 10 लाख दर्जे बुलंद करते हैं। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, इसलिए क्योंकि बाज़ार में जब आप जाते हैं ना आपको भूल ही जाता है अल्लाह का ज़िक्र करना। तो अगर आप इंशाअल्लाह ताला ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इतना आपको अजर मिलेगा। दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ठीक है, आज जुमे का दिन है तो सदका ज़रूर कोशिश कीजिएगा, चाहे 1 डॉलर 2 डॉलर हो, सदका ज़रूर निकालिएगा। हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, दो फरिश्ते जो हैं वो आसमान से उतरते हैं, और दुआ करते हैं। एक कहता है अल्लाह खर्च करने वाले को अजर अता फरमा, यानी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, और दूसरा दुआ करता है या अल्लाह रोक देने वाले को, यानी जो खर्च नहीं करता उसका माल बर्बाद कर दे। ये फरिश्ते दुआ करते हैं, सुभान अल्लाह। तो सदका करें इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि फिर इंसान पछताए कि अल्लाह तूने मुझे इतनी मोहलत क्यों ना दी थी, एकदम अचानक ही मौत आ गई, मुझे तो सदका करने का टाइम ही नहीं मिला। अल्लाह ताला माफ़ करे। किसी के साथ ये भी देखा गया है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अचानक अचानक से कोई मौत, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, यानी उसमें कोमा में चले गए, और फिर उसके बाद वो अपनी ज़ुबान से कहना चाहते हैं कुछ, हो सकता है पता नहीं सदका करने का कह रहे हो। मैं तो यही अज्यूम करती हूँ कि शायद कोई सदका करने की बात कर रहे हो, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इंसान फिर पछताता है कि अल्लाह हाय मुझे काश मौका मिल जाता। ऐसे ही समझ लें कि जैसे कोई किसी को किसी मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाए अचानक से, और उसकी सारी सेविंग सब कुछ वहाँ पे पड़ा, अब वो ना वापस जा सकता है कि वो अपनी वहाँ से ले आए, ना किसी तरह उसको ट्रांसफ़र करा सकता है। तो एक दफ़ा हम यहाँ से ये सरहद क्रॉस कर गए ना, ये ज़िंदगी का बॉर्डर हमने क्रॉस कर दिया ना, तो सारे हमारे पैसे यहीं पे बैंक में पड़े रह जाएंगे, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते वहाँ पे। आपको अभी जब तक सांस है उस वक़्त में ही ट्रांसफ़र करना है आखरत की अपने बैंक में। नहीं ट्रांसफ़र जिसने किया यहीं रह जाएगा, फिर वापस आके तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करनी है सदका करने की। अखलाकियात की एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी आज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें बताऊँ कि रोज़े और खैरात और नमाज से भी अफसल क्या चीज़ है? पता है आपको क्या चीज़ है? वो है बिगाड़ में सुलह करवाना। दो लोग लड़ पड़े हो ना, उनमें सुलह करवा देना। और फरमाया फसाद डालना वो फेल है जो इंसान की सारी उम्र की नेकियों पे पानी फेर देता है। खुदा के लिए फसादी ना बने, इधर की उधर लगाना, उधर उसको फ़ोन कर दिया, उसको ये कह दिया तुम्हें पता है फलाने ने तुम्हारे बारे में ये बात की, उधर उसको कॉल कर दिया, अच्छा तुम्हें पता है आज ये हुआ, किसी का दिल उससे खट्टा कर देना, उस वो मुझे ये बात कह रही थी, तुम्हारे घर से गई तो उसने ये कहा, भाभी को नंद के बारे में बदगुमान कर देना, सास को बहू से बदगुमान कर देना। फसाद डलवाने की किस्में है ना ये सब, ये फसाद ही फसाद है। फसाद डालने से सारी जिंदगी की नेकियों पे पानी फिर जाता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमें इस गंदे फेल से बचाए, हम फसादी ना बने। इसलिए अपनी जुबानों को रोक लिया करें, ये ना हो कि हम हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि दो लोगों में लड़ाई हो जाए, दो लोगों के दिल एक दूसरे से खट्टे हो जाए, हम फसाद करने वाले ना बने। ना दो दोस्तों को लड़वाओ, ना दो रिश्तों में फसाद करवाओ। हमें मौका मिल जाता है जब दो लोग लड़े होते हैं, हम कहते हैं चलो अच्छा है, इधर से भी चस्के लो, इधर से भी सुनो, फिर उधर जाके लगा दो, फिर उधर से सुनो, फिर इधर जाके लगा दो, चलो अच्छा है, अच्छा मौका मिल गया और ज़्यादा आग भड़काने का। वो कोई मान भी रहा होगा तो उसको और भड़काए जाएंगे कि आग ठंडी ना हो जाए। तो फसादी ना बने, बल्कि किसी के अंदर लड़ाई देखें तो सुलह कराने की कोशिश करें। नहीं करा सकते तो चुप रहो, बजाय इधर की उधर लगाने के, लगाइयाँ बुझाइयाँ ना करो। इतनी मुश्किलों से हम ये रोज़े नमाजें खैरात ये कितनी मुश्किलों से करते हैं ये सारे अमल ना, ये छोटा छोटी चीज़ें जो हम जमा कर रहे हैं, समझ ले सारे घर को आग लग गई अगर फसाद करते रहे तो इंशाल्लाह इससे अपने आप को महफूज रखना है। अल्लाह ताला हमारे क़याम और सियाम कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला ऐसे तमाम आमाल से हमें अपनी पनाह में ले ले, अल्लाह हमें बचा लेना जिससे हमारी ये टूटी फूटी नेकियां भी ज़ाया हो जाए। अल्लाह ऐसे आमाल से हम सबको महफूज रखना। अगला आपने इंशाल्लाह ताला अगला पारा पढ़ना है, और बाकी इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिका نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.